पञ्चातपत्रोभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नान्ये गौरत्विषये परसों रामनवमी है ठीक तुम्हारा कल्याण हो परसों रामनवमी है सबसे पहले रामायण को शंकर जी ने समाधि से अपने हृदय में देखा और तब उन्होंने पार्वती देवी को ये कथा सुनाई। पीछे से वाल्मीकि जी जो प्रत्येचा के पुत्र थे प्रत्येचा नकीना प्रचेता प्रचेता के पुत्र थे और कहते हैं मैंने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला, कभी भी नहीं। यदि मैंने कभी असत्य नहीं बोला, धर्म पथ पर रहा, तो सीता जी राम की पत्नी है, राम इसको ग्रहण कर, लौकुश इनके पुत्र है, इसलिए प्रचेता के पुत्र मालूम होता है। किंतु कहीं कहीं पर ऐसा देखा है, क्या आता जाता है, किंतु कहीं कहीं देखा जाता है वाल्मीकि एक पूर्व जन्म में डकैत थे, लूट मार करते। नारद जी की विशेष कृपा से तब एक ही जगह की करछी एक ही जगह में बैठकर 36,000 ना 60,000 वर्ष तपस्या की और फिर समाधि में उनको ये वस्तु मिली रामायण। एक दिन अपने भारद्वाज शिष्य के साथ गंगा में स्नान करने गए या किसी नदी में अपने आश्रम के निकट, और वहीं एक क्रंच के जोड़े को, क्रंच पक्षी और पुरुष और स्त्री एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे और परस्पर प्रेमालाप कर रहे थे, और एक बहेलिए ने बाण मारा और पति के छाती से निकल करके रक्त के साथ उगलते हुए वो मर गया। और वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए गए हुए थे, देखा क्रोध से उनके मुख से निकल गया, मां निषादो, ओ निषाद फिर कभी इस वन में नहीं आएगा। बिना किसी कारण के इन प्रेम करते हुए पक्षियों का में से एक को वध किया है, यदि आएगा सिर उड़ जाएगा। फिर जब होश में आए, वह मैंने क्या कह डाला, मुझे तो क्रोध होना नहीं चाहिए, यही तो संसार है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, मुझे क्रोध कैसे आ गया। ओहो, हमने जो क्रोध करके अभी श्राप दिया, ये भी तो चार चरणों का एक छंद है, ये कैसे निकला। लौटे और उसी समय में ब्रह्मा जी आए, मेरी प्रेरणा से ये श्लोक तुम्हारे हृदय में प्रकटित हुआ है, तो तुम इसी श्लोक के आधार पर ऐसे ही भगवान की, रामचंद्र जी की समस्त बाल्य से लेकर के अंतिम तक उनके तिरोभाव की जितनी भी लीलाएं हैं वर्णन कहो, तो मैं तो जानता नहीं। तो नारद जी ने और ब्रह्मा जी ने कहा, ये समाधिस्थ हो करके, समाधिस्थ हो, भक्ति जोगेन मनसा सम्यक पढ़ी ते अमले, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच चंद्रापर। पर समाधिग्रस्त हो गए और देखा राम की सारी लीलाएं देखा। और तब फिर रामचंद्र जी के समय में ही पहले ही उस रामायण को उसी छंदों में उन्होंने लिखा। यही आदि रामायण है, वाल्मीकि जी ने बनाया और लौकुश रामचंद्र के पुत्र सीता जी के पुत्र को पढ़ाया। और वही लौकुश राम के यज्ञ के समय में गोमती के किनारे बड़े सुंदर छंद से चढ़ाव तराव के साथ में जो उन्होंने जैसा पढ़ाया था ऐसा हृदय विदारक रूप में वर्णन किया जो रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या कैकेयी माताएं रोने लग गई। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा जिसे पूछो इसके माता पिता कौन हैं और इनको सोने के थाल में और सरथियां और बहुमूल्य वस्त्र रख करके इनको दो। लक्ष्मण जी गए पूछा बेटे तुम लोग तुम्हारे माता पिता का परिचय क्या कौन हो तुम। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी इतने आप ज्ञानी होकर के भी हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं, हम ब्रह्मचारियों का माता पिता पूछ रहे हैं, हमारा गुरु का परिचय है, हम वाल्मीकि के शिष्य हैं, इसके अतिरिक्त न हम जानते हैं न हम कहेंगे। लक्ष्मण जी चुप हो गए जवाब सुन करके। ब्रह्मचारियों का मत पूछो जे तुम्हारा कहाँ घर था, तुम्हारे मैया का नाम क्या, तुम्हारे बाप का नाम, तुम क्या करते थे, ब्रह्मचारी लोग भी भूल जाए और कोई पूछे भी नहीं उनसे, पूछे आपके गुरु कौन है, आपकी गुरु परंपरा क्या है, बस यही परिचय है और कोई परिचय नहीं, सांसारिक परिचय परिचय नहीं, गुरु परंपरा का परिचय ही यथार्थ परिचय है। सोने भरे हुए थाल मणियों मुक्ताओं से हीरे से उनको देने लगे। मुझे क्या जरूरत है, निष्प्रिय काचे ये श्री रामचंद्र राजा हैं उनके लिए जरूरत है, हमें तो अंजलि है पानी पी लेते हैं गंगा जल से, वाल्मीकि जी के आश्रम में केले अमरूद आम पेड़ है उन पड़े से फल ले लेते हैं अपने जीविका निर्वाह कर लेते हैं, हमें इन हीरो मोती जवाहरातों से क्या जरूरत है। दंग रह गए सब लोग। कौशल्या जी कह रही हैं ये उम्र में छोटे हैं राम बड़ा है किंतु चेहरा दोनों का एकदम मिलता जुलता है, जरूर हो न हो ये राम के ही पुत्र हैं। राम से कहा ये तुम्हारे ही पुत्र जैसे लगते हैं यदि बड़ा होता तो, इनको बुला करके तुम्हें स्नेह करना चाहिए। रामचंद्र जी कुछ बोले नहीं, उन्होंने आदेश दिया वाल्मीकि जी को बुला लो। वाल्मीकि जी आए, उन्होंने कहा मुझे अनुमान होता है सीता जी हो न हो तुम्हारे ही आश्रम में हैं, मेरी इच्छा है कि आप कृपा करके सीता जी को मेरे पास में लाइए। इसके थोड़े से पहले की बात है लौकुश राम के अश्वमेध यज्ञ में उनको परास्त कर दिया, हनुमान को बांध लिया, नल ने जामवंत सबको सुग्रीव को भी और लक्ष्मण जी को हरा दिया और भरत शत्रुघ्न को भी हरा दिया। रामचंद्र जी जब खुद आए घोड़े के ले जाने के लिए यज्ञ पूरा करने के लिए, जब आमना सामना युद्ध हुआ, दोनों तैयार हो गए तो सीता जी आ गई।
वाल्मीकि
जी पधारे और फिर
बताइए, बहुत हॉट है, बोले बाल हॉट के लिए राजहट नहीं होना चाहिए।
उनको मना किया। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चरित्र है। सीता जी भी आई, बोली अरे ये राजा रामचंद्र हैं, इसे लड़ना नहीं चाहिए, इनके अधीन रह करके हम लोग उनके अधीन में हैं। किंतु अभी तक लव कुश नहीं जानते थे ये मेरी मैया ये सीता है और हम रामचंद्र जी वन देवी के रूप में जानते थे। तब जब गए वाल्मीकि दूसरे दिन, हाँ तो ये लव कुश दोनों गए हुए थे, वो राम की कहानी वाल्मीकि जी का रामायण जो था उसको पढ़ करके मूर्छना ताल और सब राग रागिनियों से विभिन्न प्रकार के वीणा को लेकर के गाते थे, स्वर बहुत मीठा। रामचंद्र जी कहते हैं यही लड़के हैं जो कल क्षत्रिय जैसे वीर होकर के लड़ रहे थे, आज इनको राग रागिनी करते हुए देखा बड़े आश्चर्य की बात, इस कला में भी निपुण है। तो उस समय में इनको कुछ रामायण के गाने में कुछ देर हो गई, विलंब हो गई। सीता जी प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई, अभी तक मेरे बालक नहीं आए। जब वो आए तो पूछा जी बेटे इतना क्यों विलंब हो गया? ओ राजा रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ आकर के अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और उसमें वाल्मीकि जी गुरु जी की आज्ञा हुई, हम लोग गए थे वहीं पर रामायण सुनाने के लिए, उन लोगों को सुन करके सभी लोग रो रहे थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो रो न दे। मैया एक बात देखा विशेषकर वहाँ देखा रामचंद्र जी के बाएं तरफ में एक सोने की मूर्ति थी, आजकल जैसे तुम बोलती हो वो बोलती नहीं थी, बस सुनता सुनकर के रामचंद्र जी रोने लगे। सीता जी धैर्य नहीं कहा जो रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ा है, राजा ने रामचंद्र जी हमको नहीं छोड़ सकते। दूसरे दिन वाल्मीकि जी के साथ में सीता जी गई, दोनों बालक भी गए। उस समय में जब प्रवेश किया तो रामचंद्र जी उनको प्रणाम किया, वाल्मीकि को उनको बैठने के लिए आसन दिया, बोले जे मैं चाहता हूँ कि सीता जी अपनी सती साध्वी होने का प्रमाण दे। वाल्मीकि जी ने कहा मैं प्रमाण देता हूँ, अयोध्या में आपको प्रमाण मिला, महाराज दशरथ तक ने भी ऋषि महर्षियों ने अग्नि ने आपको कहा सीता सती साध्वी हैं, उस पर भी विश्वास नहीं हुआ, फिर मांग रहे हैं मैं यदि प्रचेता का पुत्र हूँ और हजारों वर्षों तक यदि तपस्या करता हूँ, मैंने जीवन में कभी सत्य नहीं बोला असत्य नहीं बोला, मैं सब समय सत्य बोलता हूँ, हमारी तपस्या का क्षीण हो जाए यदि मैं
झूठ बोलूँ तो
असत्य बोलूँ तो। सीता जी परम पवित्र हैं, ये बालक आप ही के हैं। राम कौशल्या जी कह कही माता सुमित्रा और वशिष्ठ जी कहने लगे बस हो चुका प्रमाण की कोई अब जरूरत नहीं है, राम बच्चों को गले से लगाओ और सीता जी को साथ लेकर के सिंहासन पर बैठ करके अश्वमेध यज्ञ करो। किंतु कठोर हृदय राम, उनके मन में कुछ और थी, वो दूसरा कोई नहीं जान सकता। उन्होंने सीता जी से कहा मैं तुम्हारे मुख से वो प्रमाण सुनना चाहता हूँ। अच्छा सीता जी खड़ी हो गईं, हाथ जोड़ करके बोली, हे पृथ्वी माता, यदि राम के अतिरिक्त मैंने किसी दूसरे का ध्यान तन मन वचन से किया हो तो आप फट जाएं और अपनी गोदी में मुझे लेकर चली जाएं। हे पृथ्वी मैया, यदि राम ही हमारे जीवन के प्राण संपत्ति सब कुछ हो, आप कृपा करके फट जाइए और उसमें मुझे स्थान दीजिए। तीन बार कहा और साथ ही साथ पृथ्वी फट गई और पृथ्वी जी एक सोने के सिंहासन पर प्रकट हो गई और सीता जी को पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा लिया और साथ ही साथ पृथ्वी
फट गई।
जब चली गई तो हाहाकार मच गया, सब सभासद रोने लगे और हाहाकार मच गया। और उस समय में रामचंद्र जी धनुष लेकर के खड़े हो गए, मेरी सास तुम लगती हो पृथ्वी, अभी सीता को लौटा दो नहीं तो समुद्र जैसे तुम्हें चूर्ण विचूर्ण कर दूंगा, अभी एक बाण ही में। अत्यंत क्रोधित होकर के रोते रोते कहा, वाल्मीकि जी ने कहा, जब हो गई थी बस इतना ही तक हमने लिखा और यहीं तक मैंने लिखा, सीता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं साकेत अयोध्या में गोलोक धाम में, अब आपको भी पधारना है, वह अपने बच्चों को राज्य दे करके भरत जी को उनके दोनों लड़कों को राज्य दीजिए और शत्रुघ्न जी के लड़कों को राज्य दे करके आपको भी जल्दी से सीता जी से मिलने के लिए वहीं पर जाना है, सीता जी कहीं गई नहीं, अब लीला का संगोपन करना है। सुनकर के रामचंद्र जी फिर सभा विसर्जित हुई, अयोध्या लौटे, अपने दोनों बेटों को लव कुश को राज्य दिया, भरत के दोनों पुत्रों को शत्रुघ्न के, और सभी लोग गुप्तार घाट अयोध्या में सरयू के किनारे गए, सारी अयोध्या के लोग उनके साथ में गए, पानी में चलते गए, लुप्त होते गए, चतुर्भुज रूप धारण किया, सब के सब अपने धाम में चले गए। इति श्री
रामायण।
राम का कोई और लीला है? हाँ बोलिए। हारमोनियम आपके पास नहीं है, ताल बिगड़ जाता है। अरे माते हारमोनियम टा की हो, तो ले आओ ले आओ ले आओ। परसों रामनवमी है, हम लोग सवेरे से ही राम की कथा कहेंगे और इसके बाद में तुलसीकृत मानस का, मानस रामायण का प्रवचन होगा, सभी लोग आएंगे और सभी लोग उसका पाठ करेंगे कीर्तन के साथ में। और रामनवमी के दिन हु विल डू,
हरे कृष्ण,
प्रजेता के पुत्र वाल्मीकि,
वन सब में चाहिए द सॉन ऑफ प्रजेता मेन वाल्मीकि ऋषि, ही वेंट टू टेक बाथ द रिवर तमसा विद हिज डिसिपल हेडेड विद भरद्वाज ऋषि, व्हेन ही वाज टेकिंग बाथ इन द मीन टाइम 100 क्रोंच, द क्रोंच एंड क्रोंच बोथ आर देयर, ही हैंड द क्रोंच on the male bird, then Valmiki Rishi became very disturbed and took some water and told Maar Nishada Tamasa
Tamagama
Tamagama Jat Kaunch Jat Kama Mahitekam Mohita Bodhi Kama Mahitam Maar Nishada Pratishtam Tamagama Sasati Sama Jat Kaunch Mithuna Ekam Bodhi Kama Mahitam. Oh Hanjal, you kill one male god, you will not get happiness and peace in your mind and peace and tranquility in your mind. Then Valmiki is told, oh Bharatas, why I became disturbed, why anger come on me, it's not good for me. Then Bharatas is told, this seems to be a very nice winter. Then the yes, then Valmiki Brahma appeared there and told, we have to compose Ramayana Kavya, the pastimes of Lord Ram. So by that meter, he composed complete Ramayana.
Lord Sankhya.
Then Lord Ramchandra, he became king, and later on he sent his consort Sita Devi in exile forever. So Sita Devi was there. She identified by herself named Vana Devi, and she had two children were there named Lav and Kush, and Valmiki Rishi brought them up very nice, taught them archery and all other weapons and all kind of social activity, everything. They became, although they teenager, became very perfect in each and every art, even archery, especially in archery and in singing. So one day, Valmiki sent them to for singing Ramayana, and Lord Ram was being Ashwamedha yajna for sacrifice. So according to the Vedic ritual, they will send the horse. Wherever horse will go, one troop will follow them, follow the horse. And wherever it was the king, they have to present some and have to be under guidance of the king. So Valmiki taught them the religion of Kshatriya. They never be keep their head down. Even a challenge comes, they will take it very strongly. So Lord and Kush hold the horse. Then Lord Ram, who was there, they made them friend. Then Satyugna came, Lakshman came, Bharat. Even they chose Hanumanji. And they made friend to Sugriva and others. At last, Lord Ram came. And Lord Ram, that two small boys, how possible? They can finish our whole armies? Even these two boys, how many told, yes Maharaj, we are the two boys. Then Lord Ram tried to make them understand, don't do so. No, I have one question to ask. Why Lord Ram sent Sita Devi exile? I want to know that only. So, but no, give this horse back, but not possible at all. You have to fight with us. Otherwise not possible. As soon as Lord Ram takes his bow and arrow, in the meantime, Valmiki appeared there. Then Lord Ram told, these two boys is very arrogant, very stubborn. Then Valmiki, this is merely small boy. For them, you have not to use your monarchy here, it's not good at all. Then Valmiki keep them quiet. And Sita Devi also told, oh, he's our king. We are their subjects. It's not good for subjects to make revolution against king. So ask forgiveness from them. It happened. Then Lord Kush went for Ramayana and he is telling, we are from Banke Basi Nagar Jagane Aaye. That we are living in forest. We came in the city to make you aware. We are sleeping home. So,
हमारा स्नेहा से याद है जीवित रह करके सुखी शांति और समय है
We have seen on golden scales, just left side of Lord Ram, King Ram. Only one difference between you and the statue. Statue do not speak, you are speaking, this is the difference only. The Sita Devi began doing, could not check herself. Sita Devi thought, oh, Lord Ram, King Ram left her, left his queen, not Lord Ram left his Sita Devi. So, Kausalya Devi told, "Oh Ram, it seems to, this is your son. Embrace them. It remind me that when you were small boy, it seems to you came again into twice in small form." Kausalya Devi is telling, Kaikeyi Sumitra, they want to embrace, but could not do so. Lord Ram, due to King etiquette, he became very grave. Later he approached to Valmiki Rishi. "It seems to me, I guess that my two sons and Sita Devi belongs to you. Please come tomorrow and bring Sita Devi and two boys with you also." So next day Sita Devi appeared with two sons. Lord Ram told, you had first of all, Valmiki told, "I am the son of Racheta. I did so hard austerity. I never tell lies. So, oh Lord Ram, please accept Sita Devi as your queen and do her sacrifice, and this is your son. So, if I tell lie, then my all austerity will finish forever." Hearing this, Vasishtha told, "Oh King, that's enough. Please take Sita Devi, keep your left side and complete the final sacrifice and take your sons." Lord Ram was very grave. He was thinking something what nobody knows. And Lord Ram told, Sita Devi, that you have to give evidence that you are chastised. You are completely chaste. Sita Devi said, as before, Devi got only given evidence, all 10 Dikpal giving evidence, even my Dasarath appeared there and told that I am chaste. You still need evidence for my chastity? Okay, no problem. Sita Devi told, Madara, if I don't know without them Ram at all, please be divided into two, please give me shelter on your lap. Second time, if I don't know other than Ram, I never touch anyone, then Mother Earth, please divide it into two. Again she told, if I don't know other than Ram, even if dream, I never thought anyone other than Ram, Mother Demigod, Mother Earth, I took birth from you, please divide it into two and give me shelter on your lap. Chaos come, like thunderbolt, everything, all became stunned, what is going to happen? Earth divided into two and one golden chariot came. Earth was there. Sita Devi spread her arms and Mother Earth took her on her lap. Immediately, again, the earth became completely covered. Lord Ram became very furious and took his bow and arrow. Mother Earth, you are my mother-in-law. Please return my Sita immediately, otherwise I will finish you completely. Valmiki told, that's enough, no more. I wrote up to this point, not beyond that. Sita is waiting for you in Ajodhya Dham. Now we have time has come to disappear from this world. So Lord Ramchandra and Bharat Satruna, they divided their kingdom to two sons of Lord Ram and Bharat, Lakshman and Satruna. After that, one after another, they went to river Saraju. They entered there, became 400, disappeared from there. This is the Ramayana. Hare Krishna. Panchakar Vataram Panchati Vasindhu Vrayasa Haritanam Bhavu.
Which
river
Bharat?
Saraju.
Saraju.
S-A-R-A-Y-U. In Ajanta.
Janakpuri mein Raya Ramchandri gaye aur कैसे कैसे राजा महाराजा सच सच के आए धनुष तोड़ने के लिए और सीता जी बीमार किए, पर ये सब ने मात खाई और रामचंद्र जी धनुष छोड़ा और सीता जी सामने बीमार किया।